नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली के धीरपुर में नवनिर्मित अरुणाचल निवास का किया उद्घाटन। 1 मई 2026 से शुरू हुआ असम अरुणाचल सीमा निर्धारण की प्रक्रिया का स्ट्रेच टू चरण संपन्न हुआ। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के सदस्य, कंप्लायंस मैनेजमेंट एवं जोनल सदस्य सुरजीत भुजावल ने राजधानी ईटानगर के नीति विहार में नए GST भवन का किया उद्घाटन। अरुणाचल प्रदेश की मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी सोनम जोम्बा ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित मिक्स फाइट नाइट 18 में अपना महिला स्ट्रोवेट विश्व खिताब सफलतापूर्वक बरकरार रखा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। भारतीय जनता पार्टी 193 सीटों से आगे। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती है। और IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने रविवार को नई दिल्ली के धीरपुर में नवनिर्मित अरुणाचल निवास का उद्घाटन किया, जिससे राज्य को बाहर यात्रा करने वाले नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि ये सुविधा राष्ट्रीय राजधानी में राज्य के चौथी संपत्ति है और विशेष रूप से इलाज के लिए आने वाले मरीजों तथा नॉर्थ कैंपस के पास होने के कारण प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगा। 2600 वर्ग मीटर में फैली ये G+8 इमारत में डॉर्मेटरी, कमरे, दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं, एक चिकित्सा इकाई और पार्किंग की व्यवस्था शामिल है। मुख्यमंत्री ने नए जिलों की समीक्षा करने की भी घोषणा की है, ताकि बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर किया जा सके। उन्होंने विकास कार्यों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार से मिले सहयोग को भी रेखांकित किया। 1 मई 2026 को शुरू हुई असम अरुणाचल सीमा निर्धारण की प्रक्रिया का स्ट्रेच टू चरण पूरा हो गया है। इस चरण में न्यू सरेन सर्कल के अंतर्गत तेलाम से सरेन आगामी नदी तक का क्षेत्र शामिल है। ये संयुक्त सर्वेक्षण असम और अरुणाचल प्रदेश के जिला प्रशासन द्वारा किया गया, जिसमें सीमा मामलों के विभाग, भूमि प्रबंधन टीमों और सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। 7 स्थानीय प्रतिनिधियों जैसे गांव बूढ़ा एवं पंचायत सदस्यों की भी इसमें सहभागिता रही। अगला चरण स्ट्रेच 3 के तहत नारी सर्कल के नामे क्षेत्र में किया जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के सदस्य, कंप्लायंस मैनेजमेंट एवं जोनल सदस्य सुरजीत भुजावल ने ईटानगर के नीति विहार में नए GST भवन का उद्घाटन किया। ये सुविधा राज्य में करदाताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और अनुपालन को आसान बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। इस अवसर पर श्री भुजावल ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में अरुणाचल प्रदेश का GST राजस्व 526 करोड़ रुपए रहा, जो 29.4% की वृद्धि दर्शाता है। अधिकारियों के अनुसार ये भवन सेवा वितरण को बेहतर बनाएगा और जागरूकता कार्यक्रमों तथा करदाता सहयोग पहलों में माध्यम से स्वैच्छिक अनुपालन को भी बढ़ावा देगा। अरुणाचल प्रदेश की मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी सोनम जोम्बा ने शनिवार को ग्रेटर नोएडा में आयोजित मिक्स्ड फाइट नाइट 18 में अपना महिला स्ट्रोवेट विश्व खिताब सफलतापूर्वक बचाते हुए उन्होंने मुख्य मुकाबले में ब्राजील की मारिस्टेला अल्वेस को दूसरे राउंड के 4:39 पर सबमिशन रिवर्स आर्मबार में के जरिए पराजित किया। ये उनका पहला खिताब बचाव था, जिसे उन्होंने MFN 17 में जीता था। तवांग की 27 वर्षीय खिलाड़ी ने शुरुआत से ही मुकाबले में पकड़ बनाए रखी और जीत दर्ज करते हुए अपना रिकॉर्ड 8-1 कर लिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उनकी उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बताया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 292 में रुझान मिल रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक भारतीय जनता पार्टी 193 सीटों से आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 93, AJUP 2, AISF 2, कांग्रेस 1 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यहां 21 मई को मतदान पुनः किया जाएगा। भाजपा प्रवक्ता तुहीन सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा है कि विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं। पार्टी असम और पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के रुझान भाजपा के पक्ष में उभर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगी। 12 वर्षों के सतत प्रयत्न और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं। असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीटें, आज लगातार तीसरी बार सरकार है। ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है।
4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मौसम विभाग ने आज बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 14 जिलों ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, लेपारादा, अंजाव, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिरप और लोंगतिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ईरान ने अमेरिका को हॉर्मुज जलडमरु मध्य में प्रवेश न करने की चेतावनी दी है और कहा है कि इस क्षेत्र में प्रवेश करने के किसी भी प्रयास का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। ईरान के खातम अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय ने एक बयान में कहा है कि किसी भी विदेशी सशस्त्र बल, विशेषकर अमेरिकी सैनिकों को इस महत्वपूर्ण जल मार्ग के पास आने पर निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सेना ने कहा है कि जलडमरु मध्य की सुरक्षा ईरान के नियंत्रण में है और जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए उसकी सेना के साथ समन्वय आवश्यक है। ये चेतावनी अमेरिका द्वारा आज से जलमार्ग पर फंसे जहाजों को सहायता के लिए अभियान शुरू करने की घोषणा के बाद दी गई है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने जमैका में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि जमैका के प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। दोनों पक्षों के बीच खासकर बुनियादी ढांचे, मानव विकास और तकनीक आधारित शासन तथा उद्यमिता पर विचार विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने भारत जमैका संबंधों में हाल के घटनाक्रम पर भी चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने जमैका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद में तबेगो की यात्रा पर है। भारत ने लिपेलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत लगातार कहता है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों पर परे हुए हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने की आपत्ति जताई। नेपाल ने कहा कि एक क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक बढ़कर 77,073 पर, जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 24,056 पर था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से देश भर में आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली के धीरपुर में नवनिर्मित अरुणाचल निवास का उद्घाटन किया। 1 मई 2026 से शुरू हुआ असम अरुणाचल सीमा निर्धारण की प्रक्रिया का स्ट्रेच 2 चरण हुआ संपन्न। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के सदस्य, कंप्लायंस मैनेजमेंट एवं जोनल सदस्य सुरजीत भुजाबल ने राजधानी ईटानगर के नीति विहार में नई GST भवन का किया उद्घाटन। अरुणाचल प्रदेश की मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी सोनम जोम्बा ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित मैट्रिक्स फाइट नाइट 18 में अपना महिला स्ट्रॉवेट विश्व खिताब सफलतापूर्वक बरकरार रखा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। भारतीय जनता पार्टी 193 सीटों से आगे। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में 1-1 सीट जीती है। और IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।